रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुदूर पश्चिम कर्णाली और गंडकी प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में हुआ हिमपात, जनजीवन दुष्प्रभावित। सिंधुपालचुक के भैरवकुंड आसपास को केंद्र बनाकर आज सुबह आए भूकंप का 7 जिलों में हुआ असर, कुछ लोग हुए घायल और घरों में पहुंची क्षति। तापलेजुंग की सिरिजंगा गांवपालिका में निर्मित 12 मेगावाट क्षमता की सुपर काबिली जलविद्युत परियोजना की बिजली जोड़ी गई राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में। और पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में 5 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सुदूर पश्चिम कर्णाली और गंडकी प्रदेशों के हिमालयी इलाकों में बारिश के साथ हुए हिमपात के कारण जनजीवन दुष्प्रभावित बना हुआ है। कल बृहस्पतिवार से सुदूर पश्चिम के पछांग, बाजुरा, अछामलगत हिमालयी जिलों के उच्च भूभाग में हिमपात और पहाड़ी भूभाग में बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई है। हालांकि बारिश से कृषि उत्पादन बढ़ने की बात को लेकर किसान खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार सर्दी में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए इस बारिश से खेती में फायदा होगा। ये जानकारी हमारे संवाददाताओं ने दी। आज सुबह से हुई बारिश और हिमपात के कारण मध्य पहाड़ी लोकमार्ग का बागलुंग खंड अवरुद्ध है। सड़क पर मोटी बर्फ जमी हुई है। सड़क अवरुद्ध होने से पूर्वी और पश्चिमी रुकुम, जाजरकोट, डोलपा लगायत स्थानों से आने वाले वाहनों की आवाजाही ठप है। वहीं मुगू के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ने से जनजीवन दुष्प्रभावित है। हिमपात से ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन डोलपा के किसान अपनी आमदनी के मुख्य स्रोत यारचा कुंभा और सेब के साथ ही अखरोट के उत्पादन में इससे बढ़ोतरी होने को लेकर बेहद खुश हैं। सिंधुपालचुक के भैरवकुंड आसपास को केंद्र बिंदु बनाकर आज सुबह आए 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप का 7 जिलों में असर पड़ा है। ये जानकारी नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता डीआईजी दिनेश कुमार आचार्य ने दी। उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण सिंधुपालचोक, भोजपुर, काठमांडू, दोलखा, संखुआ सभा, म्यागदी और धादिंग में लोगों के घायल होने के साथ ही कुछ घरों में क्षति पहुंची है। उनके मुताबिक भूकंप के कारण उन जिलों में 6 लोग घायल हुए हैं और एक घर में पूर्ण और 4 घरों व एक तबेले में आंशिक क्षति पहुंची है। सिंधुपालचोक के भैरवकुंड को केंद्र बिंदु बनाकर आज सुबह 2:51 पर भूकंप आया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि तीसरे नेपाल जापान फ्रेंडशिप समिट 2025 के माध्यम से दो देशों के संबंधों और अधिक विस्तार में मदद मिलेगी। समिट में सहभागी होने नेपाल आई जापानी टोली और नेपाली समन्वयकर्ताओं के साथ आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में हुई भेंट में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल और जापान के बीच मौजूद सरकार का संबंध अब आयात निर्यात में भी विकसित होने लगा है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए भूमि संबंधी अध्यादेश के पास होते ही ठोरी वासियों को जमीनों के लाल पुर्जे मिल जाएंगे। परसा की ठोरी गांवपालिका द्वारा आज ठोरी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी ने कहा कि सरकार आईन कानून के निर्माण, अनधिकृत की जा रही और अनुचित तौर पर कब्जा की गई सरकारी जमीनों को वापस लाने में जुटी हुई है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने अपने जेनेवा भ्रमण को सफल और उपलब्धि मूलक बताया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा का सप्ताहव्यापी दौरा पूरा कर आज स्वदेश लौटने के बाद मंत्री डॉ देववा ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रसंघ के सन 2027 से 2029 तक के लिए मानव अधिकार परिषद के सदस्य, 2029 से 2031 तक के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और सन 2037 से 2038 तक के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए नेपाल उम्मीदवार होगा और इसमें सहयोग के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
बाकी समाचार। तापलेजुंग की सिरिजंगा गांवपालिका में निर्मित 12 मेगावाट की सुपर काबिली जलविद्युत परियोजना की बिजली को राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़ा गया है। हिल्टन हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा उत्पादित बिजली 5 थर के अमरपुर सबस्टेशन के जरिए राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़ी गई है। मध्य प्रदेश के मिथिला क्षेत्र में मध्यमा परिक्रमा शुरू हुई है। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलने वाली मध्यमा मिथिला परिक्रमा जनकपुर धाम की हनुमानगढ़ी से शुरू हुई है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। बता दें कि मिथिला परिक्रमा के क्रम में नेपाल और भारत से सहभागी होने वाले तीर्थयात्री दोनों देशों की करीब 133 किलोमीटर की दूरी 15 दिनों में पूरी करती है। शेरपा समुदाय ने ग्यालपो लोसार आज विविध कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। नए वर्ष के रूप में शेरपा समुदाय ग्यालपो लोसार फागुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मनाता है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण के लिए सार्वजनिक संचार माध्यमों को प्रभावकारी भूमिका निभाने की जरूरत है। आज सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसपी रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दीबास महोत्तरी के आज स्थलगत अनुगमन के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विष्ट ने ये बात कही। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाज में बहुत से सकारात्मक विषय हैं और उन्हें उजागर करने का दायित्व पीएसपी का ही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले के अकोरा खट्टक इलाके में दारुल उलूम हक्कानिया मस्जिद में आत्मघाती धमाका हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पेशावर डिवीजन कमिश्नर रियाज महसूद के हवाले से बीबीसी ने ये बात बताई। इस धमाके में मरने वालों में मौलाना हमीदुल हक हक्कानी भी शामिल हैं। वो जमीयत उलेमा ए इस्लाम समीउल हक समूह के प्रमुख और मदरसा प्रशासक थे। 57 वर्षीय हमीदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे। वो साल 2002 से लेकर साल 2007 तक नेशनल असेंबली के सदस्य भी थे। साल 2018 में उनके पिता समीउल हक की हत्या हो जाने के बाद हमीदुल हक हक्कानी को जमीयत उलेमा ए इस्लाम का प्रमुख बनाया गया था। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली स्थित माणा में हिमस्खलन आने के कारण वहां सड़क निर्माण में जुटे 57 मजदूर फंस गए। हालांकि 16 मजदूरों को बचा लिया गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। यह हादसा आज दोपहर बद्रीनाथ धाम के आगे माणा में ग्लेशियर टूटने से हुआ। इससे पहले चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मीडिया को बताया वहां बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसलिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा मूवमेंट कठिन है, वहां कोई सैटेलाइट फोन या अन्य उपकरण उपलब्ध न होने के कारण उन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुदूर पश्चिम कर्णाली और गंडकी प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में हुआ हिमपात, जनजीवन दुष्प्रभावित। सिंधुपालचोक के भैरवकुंड आसपास को केंद्र बिंदु बनाकर आज सुबह आए भूकंप का 7 जिलों में हुआ असर। कुछ लोग हुए घायल और घरों में पहुंची क्षति। तापलेजुंग की सिरिजंगा गांवपालिका में निर्मित 12 मेगावाट क्षमता की सुपर काबिली जलविद्युत परियोजना की बिजली जोड़ी गई राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में और पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में 5 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।